ओम शांति। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी का बहुत 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 इस हमारी भट्टी में स्वागत करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी, जो विशेष रूप से जो हमारा मान सरोवर परिसर है उसके सारे ही कार्यक्रमों को आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे वहाँ भट्टी हो चाहे वो कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन संपूर्ण रूप से सब कुछ सुचारू रूप से चले, सबकी पालना हो, आध्यात्मिक पालना हो, शारीरिक पालना भी हो, सब कुछ आप ही संभालते हैं। और बाबा के जितने भी स्थान हैं, चाहे वो ज्ञान सरोवर है, आनंद सरोवर है, मनमोहिनी वन है, शांति वन है, पांडव भवन है, जहाँ भी भट्टियाँ चल रही है, कॉन्फ्रेंसीज है, राजयोग शिविर चल रही है, हर जगह पर दीदी का वक्तव्य होता ही होता है। उसी के साथ साथ आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं महिला विंग के, और दीदी को जिस प्रकार हमने इतने वर्षों से देखा है तो उनके लिए कुछ एक पंक्तियां भी लिखी हैं। आप दीदी शांति की मूरत, स्नेह की धारा हो, सेवा में सदा अग्रसर, हर दिल को छू ले ऐसी वाणी है आपकी, नजरों में सरलता, मन में उजियारा, हर आत्मा को बना दे प्यारा सहारा, सहजता, सौम्यता और मधुर मुस्कान है आपकी पहचान, नारी शक्ति की सच्ची प्रतीक, सद्गुणों से सजा उनका व्यवहार, बने सबके लिए प्रेरणा का उपहार। तो हमारी आदरणीय दीदी बहुत सुंदर विषय लेकर हमारे बीच में आए हैं, निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी कैसे बने ब्रह्मा बाप समान। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति। जो यहाँ पांडव भवन में पहली बार आए हैं, माना रहने के लिए पहली बार आए हैं, वैसे तो आते ही हैं चार धाम करने, वो हाथ उठाएं। अच्छा, मेजॉरिटी पहली बार आए हैं तो सबको अच्छा लग रहा है। यहाँ योग लगाने की मेहनत करनी पड़ रही है, यहाँ तो अपने आप योग लग जाता है। तो बाबा का ये इतना पावरफुल स्थान है, पवित्र स्थान है, जिसकी अनुभूति ही न्यारी है ना, तो इसका पूरा लाभ लेना है हमको। हम जो भी तीन दिन चार दिन बाबा ने हमें दिए हैं, तो इस भट्टी में बिल्कुल बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करते हुए ना, एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी अनुभूति, पावरफुल अनुभूति जो हम यहाँ कर सकते हैं वो और कहीं नहीं कर सकते। तो क्योंकि बाबा के समान बनने का लक्ष्य है हमारा, बाबा जब संपन्न बने, संपूर्ण बने, तब बाबा ने ये तीन शब्द उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनो। तो ये तीनों शब्द हमारी संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है कि जब हम कर्मातीत बनेंगे, आज भी बाबा ने याद किया ना कर्मातीत स्थिति को, तो सदा ही हमारी निराकारी स्थिति होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे अभी देह अभिमान के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, देह अभिमानी तो रहते ही हैं, आत्मा समझने में मेहनत करनी पड़ती है तो उल्टा हो जाएगा, है ना। आत्मा नेचुरल याद रहेगी और देह समझने में मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्या कहेंगे? हो सकता है, लेकिन पुरुषार्थ है ना। इसीलिए बाबा रोज रोज मुरली में हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें क्या बनना है, देही अभिमानी, अशरीरी, निराकारी, विदेही, जो भी हम कहें बहुत से नाम हैं, आत्माभिमानी, वो हमें बनना है। तो बाबा के समान, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने, मम्मा ने, अभी मम्मा का मास चल रहा है, हमने कल ही मम्मा का दिवस मनाया, तो मम्मा ने भी ये पुरुषार्थ किया, विशेष 14 साल की उनकी जो भट्टी थी वो यही भट्टी थी, शुरू में ज्यादा कुछ ज्ञान था ही नहीं, सिर्फ आत्मा का ही ज्ञान था। और दादियां हमें सुनाती हैं कि हम बस आत्मा के एक गुण को पकड़कर बैठ जाते थे ना। भट्टी का प्रोग्राम तो वतन से ही आता था उस समय। बाबा को ऑल माइटी बाबा कहते थे उस समय, तो ऑल माइटी बाबा ने ये प्रोग्राम दिया है। तो 7 दिन इन इन लोगों को नाम भी आते थे कि इन इन लोगों को भट्टी में बैठना है। और खाने का भी प्रोग्राम आता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मना जैसे था कि वाइट चीजें ही खानी है, तो फिर जो वाइट वाइट होता था वही खाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाते थे। जो पुराने हैं वो तो जानते हैं कि ऐसे दादियां भट्टी करते थे उस समय। तो फिर एक संकल्प, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, ये हमारे शुद्ध संकल्प है ना, सेल्फ रियलाइजेशन है ये। तो बोलते थे दादी कि बस हम एक संकल्प में स्थित होते थे और घंटों बीत जाते थे, हमें पता ही नहीं चलता था। इसको कहते हैं लगन में मगन होना, या बाबा के लव में लीन होना। समय कहाँ चला गया पता ही नहीं ना, पूरे 4 घंटे हो गए और हम उसी स्थिति में बैठे हैं और कोई संकल्प नहीं। तो आप लोग ऐसी भट्टी कर रहे हो, या 1 मिनट यहाँ 1 मिनट वहां, 1 मिनट परमधाम में, दूसरे मिनट नीचे, तीसरे मिनट कलकत्ता में, चौथे मिनट इससे मिलना है वहां जाना है, क्या कहेंगे क्या कहेंगे। यहाँ तो बेटर है, पांडव भवन में तो थोड़ा अच्छा योग है, अपने स्थान पर होते हैं तो ऐसे ही योग करते हैं। तो ऐसा भट्टी का योग हो हमारा, तब होगा जब हमारी आत्मिक स्थिति इतनी पावरफुल होगी। पावरफुल माना इतना निरंतर अभ्यास होगा हमारा, तो एकाग्रता बनना सहज होती है। नहीं तो व्यर्थ संकल्प में ही पहले समय जाता है, क्योंकि मन को टिकाना पड़ता है ना, मन को अनेक प्रभाव पड़ जाते हैं। सारे दिन में हम इतने लोगों से मिलते हैं, इतने काम करते हैं, और भी कई समस्याएं आती हैं, तो उन सब के प्रभाव हमारे मन पर होते हैं। तो जैसे ही हम योग में बैठते हैं वो सब शुरू हो जाता है, और जब तक वो शांत नहीं होता तब तक मन बाबा में लगता नहीं, वो बातें पहले चलती। तो 10 मिनट तो हमारे ऐसे ही चले जाते हैं, फिर मन कितना शुद्ध संकल्प में टिक पाता है वो भी हरेक की अपनी अपनी स्थिति है। तो यहाँ पर इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि बीच बीच में हमें अपनी अशरीरी स्थिति या आत्मिक स्थिति का अटेंशन रखना है। हम रखते हैं, मुरली शुरू हुई, थोड़ा मैं आत्मा हूँ समझकर हमें मुरली सुनना है। योग करने बैठते हैं तो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, तभी योग लगेगा। देह समझकर याद करेंगे तो योग नहीं लगेगा। तो थोड़ी मेहनत करते हैं उस समय, वो भी पूरा समय नहीं, बाकी सारा दिन कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे बॉडी कॉन्शियस भी हो जाते हैं। और बॉडी कॉन्शियस होने की निशानी क्या है? हाँ, अगर हम देह भान में आ गए काम करते करते तो उसकी निशानी क्या है? क्योंकि भूल तो जाते हैं मैं आत्मा हूं, तो क्या निशानी होती है? मेरे पुराने संस्कार शुरू। फिर छोटी छोटी बात में हम कब चिढ़ गए, कब हमने जोर से बोल दिया, कब हमने अपने आप को अशांत कर लिया, दुखी हो गए, फीलिंग में आ गए, सब क्या है? देह अभिमान के संस्कार। और अगर ये इमर्ज हो रहे हैं इसका मतलब हम सोल कॉन्शियस नहीं हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं। क्योंकि देह अभिमान ही विकारों की जड़ है, विकार प्रकट ही होते हैं देह अभिमान से। तो हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम कितना आत्मअभिमानी बने हैं। जो देही अभिमानी होगा कि कोई भी परिस्थितियां आएंगी ही, वो तो आनी ही है ना। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि माया के तूफान, माया का काम ही यही है ना, लेकिन तूफान आएंगे पर हमें उन तूफानों से क्रॉस कर लेना है। तो फिर नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन अगर हमारी स्थिति आत्मिक है, देही अभिमानी है, तो फिर इनका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। आत्म अभिमानी माना आत्मा के गुण इमर्ज होते हैं। आत्मा के गुण अभी हमने कहा ना, कौन से गुण, कौन से गुण, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, ये गुण हमारे फीचर्स से दिखाई देंगे। अगर हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हमारे फीचर्स में, हमारे स्वरूप में, जिसको बाबा कहता है, वो गुण दिखाई देंगे, दूसरों को भी अनुभव होंगे, ऐसे नहीं हमको ही फील होंगे, लेकिन जो भी हमारे संपर्क में भी आएंगे उनको भी ये महसूस होगा कि ये क्या है ना, ये तो है ही शांत स्वरूप, ये तो हमेशा ही शांति से बात करते हैं, ये है ही प्रेम स्वरूप, इनको कुछ भी कह दो इनको गुस्सा आता ही नहीं है, या ये है ही शक्ति स्वरूप, कभी भी इनकी ऐसी कोई शिकायत नहीं होती है। कईयों को बोल भी देते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, आप लोग जिनके संपर्क में आते हैं, संबंध में रहते हैं, जब वो आपसे ऐसा अनुभव करते हैं तो आगे से बोल भी देते हैं, आप कैसे इतना शांत रहते हैं, कैसे आप में इतना धीरज है, आप इतना खुश रहते हैं। किसी को बोला कभी किसी ने, जिसको बोला है वो हाथ उठाओ, देखो पर मेजॉरिटी नहीं है, इसका मतलब है तो सही, अगर उनको बोल सकते हैं तो सबको बोल सकते हैं, तो फिर हमको क्यों नहीं बोलते, तो हम कहाँ हैं अभी, इसका मतलब हमारे गुण प्रकट ही नहीं हो रहे, उतनी हमारी स्थिति बनी ही नहीं अभी कि हमारी वृत्ति से वो वाइब्रेशन फैले। ये कैसे फैलेंगे, सूक्ष्म में फैलते हैं ना, स्थूल में थोड़ी फैलेंगे, तो सूक्ष्म में ही लोगों को अनुभव होता है, क्योंकि गुण तो सूक्ष्म होते हैं ना, स्थूल की तो बात ही नहीं है। तो आत्मिक स्थिति है मेरी पक्की, इसका मतलब ये गुण मुझे भी अनुभव होंगे और जो मेरे संपर्क में आएंगे उनको भी वैसी ही अनुभूति होगी। जैसे मम्मा का सुन रहे हैं ना, हम इतने दिनों से मम्मा की विशेषताएं सुन रहे हैं, तो मम्मा से सबको क्या महसूस होता था, मम्मा में इतनी रूहानियत थी, मम्मा में वो प्यूरिटी की रॉयल्टी थी, वो दिखाई देती थी मम्मा के स्वरूप से, वो लोग महसूस करते थे कि कोई देवी है हमारे सामने, कोई साधारण व्यक्ति के सामने हम नहीं हैं। तो ऐसे ही आत्मिक स्थिति माना जो हमारा पवित्र स्वरूप है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है माना वो रूहानियत की झलक और फलक चेहरे पर होती है। एक साधारण आत्मा है, लौकिक दुनिया वाली है, और एक ब्राह्मण आत्मा है, फर्क होता है नहीं होता, किसके चेहरे में रूहानियत होती है, किसके चेहरे में होगी रूहानियत, जिसका ज्यादा से ज्यादा आत्मिक स्थिति का अभ्यास होगा, जो जितना देह अभिमान से न्यारा होगा उतनी ही रूहानियत उसके चेहरे पर नजर आएगी। तो इसीलिए नंबर वार है, सबकी एक जैसी नहीं है, तो फिर हमारा पुरुषार्थ कितना है उस अनुसार हमारी वो रूहानियत है और प्यूरिटी की भी नजर आती है। आती है नहीं आती है ब्राह्मणों में, भले ही परसेंटेज में नजर आती है, लेकिन प्यूरिटी भी नजर आती है, और सिर्फ हमको ही नहीं, जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो फील करते हैं कि इनकी दृष्टि वृत्ति हमारे जैसी नहीं है, इनका जो देखने का तरीका है। दुनिया में भी कहते हैं ना, किसी की अगर दैहिक दृष्टि है, दैहिक दृष्टि है माना अगर बुरी नजर, जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं बुरी नजर, तो पता चल जाता है ना कि इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। ऐसे ही अगर प्योर दृष्टि है तो भी पता चलता है कि इनकी दृष्टि और हमारी पवित्र दृष्टि दूसरों को भी पावन बनाने वाली है, हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा न कि उनका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में हम रहते हैं, कलयुगी दुनिया है, तो ऐसे ही वातावरण है, ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही दृश्य हैं, सारे दिन मीडिया में वही चलता रहता है, क्योंकि है ही वो दुनिया। तो फिर ये सब देखते सुनते हुए संपर्क में आते हुए भी हम क्या दे रहे हैं? दोनों बातें हैं, या तो हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं, क्या करें, वातावरण ही ऐसा है ना, क्या करें, ऐसा ऐसे ही हमको दिखाई देता है, या फिर कोई कैसे भी हैं, लेकिन जैसे बाबा कहता है आप प्रकृति के तत्वों को भी पावन बनाने वाले हो, तो ये तो मनुष्य आत्माएं हैं, तो क्या उनको हम पावन नहीं बना सकते? बना सकते? नहीं बना सकते। तो ऐसे दादियों का अनुभव होता था, दादियां सुनाते थे शुरू शुरू में जब वो सेवा पर निकले, पहले तो वो मंडली में रहे तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब भारत में आए सेवा के फील्ड में आए तो इतने हैंड्स तो थे नहीं, तो अकेले अकेले बहनें जाकर के सेवा करती थी, और लोगों को कोई ब्रह्मा कुमारियों का पता ही नहीं था, तो लोग समझते थे ये बहनें रहती हैं माना क्या, थोड़ी समझते थे इतना ऊंचा लक्ष्य होगा कोई, तो कई लोग ऐसे ही घुस जाते थे अंदर कि क्या चलता है देखें। फिर वहां जाकर के देखा सुना तो ऐसा परिवर्तन हुआ कि जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा के वारिस बच्चे ही बन गए, तो किसने परिवर्तन किया? जो हमारी दादियों की स्थिति थी, उनकी जो वृत्ति थी, प्यूरिटी थी, उसने उन आत्माओं को भी जो कोई गलत लक्ष्य लेकर के अंदर गए, लेकिन वो भी बदल गए, वो भी परिवर्तन हो गए। तो इसलिए बाबा कहता है आप पतितों को भी पावन बनाने वाले हो, जैसे बाबा हम पतितों को पावन बनाने के लिए आया है, तो ये हमारा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और वो तभी होगा जब हमारी आत्मिक दृष्टि वृत्ति इतनी पावरफुल होगी। एक मेरा भी अनुभव है, मैं पहली बार जब विदेश गई थी, अमेरिका में गई, तो हम जानते हैं विदेश की कल्चर क्या है, आजकल तो सारी दुनिया उसी कल्चर को फॉलो कर रही है ना, हमारे भारत में भी जो है वेस्टर्नाइजेशन कितना होता जा रहा है, सब तरीके तौर तरीके बदलते जा रहे हैं। तो वहां पर हम गए, जहां मैं सेंटर पर थी, तो उनको निमंत्रण था उस शहर के मेयर का, उनका बर्थडे था, तो वीआईपी की सेवा तो करते ही हैं, तो मिलते रहते होंगे उनको, तो उन्होंने अपने बर्थडे पर बहन को बुलाया था, मेरा बर्थडे है तो कहा ठीक है हम आएंगे, तो मैं थी वहां, तो मुझे बोला कि आपको भी चलना है और सेवा होगी, क्योंकि उनके संपर्क मेयर माना एक पोस्ट है शहर की, तो फिर उनके कनेक्शन के वैसे ही लोग वहां आएंगे तो सेवा होगी। फिर उसने मुझे आगे से कहा कि ये है ना अमेरिका है, तो अमेरिका में लोग कैसे पार्टी करते हैं ना, मतलब आप ये नहीं समझना भारत जैसा होगा, तो यहाँ सब कुछ आपको ऑकवर्ड लग सकता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, इतनी समझ दी है कि हम सेवा पर जा रहे हैं तो हमारा उनके प्रति कैसा भाव होना चाहिए। फिर हम गए वहां पर, तो वहां ऐसे ही था, वहां तो लोग सिंपल नहीं मिलते, हमारे यहाँ जैसे नहीं मिलते ना, लोग तो गले लग के, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, सब एक दो को गले लग के मिलेंगे और आपस में मतलब बहुत नजदीकी से जैसे मिलते हैं, और उनकी ड्रेसेस भी ऐसे ही होती हैं पार्टी की, और पीना ड्रिंक करना ये तो वहां कॉमन होता है, ये सारा ऐसे ही था पार्टी का माहौल ना। लेकिन उन्होंने उसने फिर भी मेरे को जो भी उनके थे मेन मेन उनसे परिचय कराया, मिलाया। खाना तो हमको कुछ था ही नहीं, बाकी वैसे ही हम मिलते रहे सबसे, तो एक घंटा लगभग चला होगा ये सब। फिर बाद में पार्टी पूरी हुई, फिर हम भी मिलकर निकलने लगे उनको मेयर को, तो फिर उनके जो वहाँ फ्रेंड्स थे वहां पर, तो उन्होंने हमको कहा, मेरी तो वाइट ड्रेस ही थी, वो बहन ने तो फिर भी एक रंगीन जैकेट पहना था ऊपर, पहनी तो साड़ी ही थी, पर वो तो अमेरिकन बहन थी। तो उन्होंने हमको कहा कि आज की पार्टी में आप दो जैसे हमारी पार्टी में एंजल थे, तो अब एंजल थे माना माना उनसे हम बिल्कुल अलग थे, और कुछ हमसे अलग वाइब्रेशंस उनको फील हो रहे थे। तो ये समझ सकते हैं आप कि क्यों, क्योंकि हमारा सोचना देखना उनकी तरह नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने हमसे ऐसा महसूस किया। तो हम अगर अपनी स्थिति में हैं तो हमारा प्रभाव ना पड़े ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कहा कि हम कैसी भी दुनिया में कैसे भी वातावरण में रहते हैं, लेकिन अगर हमारी स्मृति स्थिति वैसी है तो फिर उसका प्रभाव हम डालेंगे, न कि उनका प्रभाव। अब उनका भी हम पर पड़ सकता था, है ना, लेकिन हम कमजोर नहीं थे, पावरफुल थे, तो फिर हमारा प्रभाव उन पर पड़ा, उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ा। फिर जितना हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं उतने ही हमारे कर्म भोग, निराकारी स्थिति जो है, वो कर्म भोग को कर्म योग से सूली से कांटा बनाने वाली है। कर्म भोग तो हम सबके सामने आने ही हैं, क्योंकि सब हिसाब किताब यहीं चुकटू करने हैं, तो किसी के ज्यादा हैं, किसी के कम हैं, क्योंकि कई आत्माएं योग बल से भी चुकटू कर लेती हैं। जिनका योग अच्छा है योग से भी कर्म विनाश होते हैं, योग अच्छा नहीं है तो भोगना पड़ता है। तो फिर वो भोगना कैसी है, अगर हमारा योग अच्छा है, जैसे कहा आत्मिक स्थिति है हमारी, तो बाबा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन होगा, और जब वो डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, तो फिर बाबा की जो हमें मदद मिलती है, जो दुआएं मिलती हैं, उससे हमारा वो हमें सूली से कांटा माना जैसे कि आया और गया ऐसे महसूस होता है। अब चाहे वो तन का हिसाब किताब है, चाहे वो आपसी संबंधों में हमारे हिसाब किताब है, चाहे वो हमारे मन के संबंध में ना टेंशन में आ जाते हैं, कोई भी बात को लेकर दुखी हो जाते हैं, कोई भी हिसाब किताब हमारे सामने आता है, लेकिन हम उसे सहज पार कर लेंगे। तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चे अनुभवी भी हैं। बाबा कहता है कि जो अशरीरी स्थिति है वो एक इंजेक्शन का काम करती है। जैसे व्यक्ति को बहुत दर्द है और उसे इंजेक्शन दे दें तो मिनट्स में वो ठीक हो जाता है, गोली खाएंगे तो भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंजेक्शन मिलते ही, और नस में इंजेक्शन लगा दो तो सेकंड्स में, वैसे इंजेक्शन लगाओ तो थोड़े मिनट लगेंगे, है ना, तो इतना फास्ट काम करता है। तो ऐसे ही अशरीरी स्थिति माना, जैसे ही हम देह से न्यारे होते हैं, आत्मा डिटैच हो गई ना शरीर से, तो वो जो दर्द की फीलिंग है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। तो अगर हम कुछ मिनट के लिए अशरीरी हो जाएं ऐसी स्थिति में, मेनली होता ये है कि जब दर्द होता है ना तो बुद्धि दर्द की तरफ ही खिंची रहती है, बाबा भूल ही जाता है, माना योग जो है वो लगता ही नहीं दूसरे शब्दों में। लेकिन अगर हम हो गए अशरीरी तो फिर ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कि बिल्कुल ही दर्द से फ्री हो गए। है किसी को ऐसा अनुभव? हमको तो है, देखो कुछ कुछ हाथ उठा रहे हैं, तो अगर 8-10 को भी अनुभव हो सकता है तो सबको हो सकता है, है ना। तो हम कोशिश करें ऐसे समय पर कि हम पूरी तरह से देह से न्यारे हो जाएं। और कई तो प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं योग का प्रयोग करना। ऐसे समय पर जब शरीर में कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई बहुत कष्ट होता है, है ना, वैसे तो छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, उसका इलाज के लिए तो हम ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसको असाध्य बीमारी कहते हैं ना, आजकल वो बीमारियां होना भी कोई अनकॉमन नहीं है, वो भी हो ही जाती हैं कोई ना कोई, तो फिर ऐसी स्थिति में जब वो बीमारी दोनों कष्ट देती है, शारीरिक कष्ट भी देती है मानसिक कष्ट भी देती है, पहली बात तो मन कष्ट में आना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं आपकी आत्मा सदा स्वस्थ है, शरीर बीमार है। जो हम दादियों को देखते थे, क्योंकि दादियों को भी बहुत समीप से देखा हमने, देखा महारथियों ने भी अपने हिसाब किताब तो चुकतू किए हैं, ऐसी तो कोई आत्मा रही नहीं जिसके हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए, और शायद उनके हमसे ज्यादा, जितने महारथी उतने बड़े बड़े। बाबा ने कहा ना सबसे ज्यादा तूफान सबसे पहले मेरे सामने आते हैं, तो मैं अनुभवी बनता हूं तो फिर बच्चों को बताता हूँ। आज की मुरली में बोला ना बाबा ने, तो हमने देखा कि हमारे बड़ों ने हमसे भी ज्यादा पेपर पास किए हैं, तन के भी पेपर, लेकिन आत्मा सदा स्वस्थ, आत्मा को कभी दर्द में नहीं, क्योंकि दर्द तो आत्मा को फील होता है ना। तो हम देखते थे बड़ी दादी जी को, डॉक्टर पूछते थे कि दादी आपको क्या तकलीफ है, तो दादी कहती थी मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या तकलीफ है। तो वो सोचते थे कि दादी तो बिस्तर पर है और कहती है मैं ठीक हूँ। तो फिर दादी कहती थी, पूछते थे वो कि दादी आप तो अभी बिस्तर पर हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो दादी कहती शरीर को तकलीफ है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उन्होंने कभी अपने आप में आने ही नहीं दिया कि मैं बीमार हूँ, मैं आत्मा तो स्वस्थ हूँ ना। तो फिर जब मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन स्वस्थ है और बाबा की शक्ति हमारे साथ है, तो वो बीमारी का कष्ट हमें महसूस होता ही नहीं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी है। तो फिर दादियों को हम देखते थे कि कभी वो दर्द में थे ही नहीं, कभी भी हमने उसको उनको बीमारी में आवाज करते हुए नहीं सुना। नहीं तो कईयों को थोड़ा भी दर्द होता है ना तो शुरू हो जाते हैं, दिन में 10 बार बोल देंगे मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, आपको पता नहीं है मुझे क्या है ना। लेकिन बड़ों को हमने कभी भी ये कहते हुए नहीं सुना। हमारा जिनके भी मैं समीप रही, जैसे मैं दादी प्रकाशमणि के समीप रही, दादी शांतामणि जी थी, हम वरदानी भवन में रहते थे तो दादी के समीप रहते थे पास में, दादी निर्मल शांता जी थी उनके साथ समीप में रहे, कभी नहीं मुंह से आवाज है ना। लास्ट के 2-3 साल सभी अच्छी तरह से, मतलब भले आयु भी थी, आयु की भी बीमारियां होती हैं, उसके भी कष्ट होते हैं, लेकिन कभी नहीं। तो ये समझ सकते हैं ना कि उनकी स्थिति कितनी उपराम थी, कितना वो देह से न्यारे थे। तो बाबा हमें ऐसे ही चाहते हैं, बाबा तो सेकंड में गए, बाबा तो उड़ता पंछी की तरह कर्मातीत बने, क्लास करा के आए, आकर बैठे और 1 मिनट में बाबा गए वतन में, है ना। लेकिन जो बाकी सबको देखा हमने, शरीर का कष्ट होते हुए भी उसे अनुभव नहीं किया, तो ये है अशरीरी स्थिति। और बाबा ने अभी 2 दिन पहले मुरली में कहा कि अगर हम अकाल स्थिति में रहते हैं, कल या परसों की बात है, अगर हम अकाल स्थिति में रहते हैं, अकाल आत्मा की स्थिति है ना, अकाल तो आत्मा ही है, तो उस स्थिति में रहते हैं तो क्या फायदा होता है, हाँ? अकाले मृत्यु, जिसने ध्यान से सुना होगा उसको याद है, अकाले मृत्यु कभी नहीं होगी। तो अगर अकाले मृत्यु, आज का समय तो अकाले मृत्यु का है, तो फिर किस में रहना है, अकाल स्थिति में रहना है। एक तो मृत्यु का भय नहीं होगा कभी भी, अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा तो कभी नहीं मरती है ना, शरीर समझते हैं तो शरीर में मोह होता है, मोह होता है तो मरने का डर लगता है। तो जो आत्मिक स्थिति में है वो शरीर भी छोड़ेगा तो खुशी खुशी छोड़ेगा, जाना तो है ही ना, अमर बन के तो कोई आया नहीं है, जाना तो सभी को ही है, लेकिन कैसे जाएंगे, अंतमति कैसी होगी, वो भी बाबा ने सिखाया कि अंतमति सो गति। अगर अंत में हमने खुशी से शरीर छोड़ा तो गति क्या होने वाली है, सतयुग में ऊंच पद मिलेगा, और अगर सतयुग नहीं आया है, जैसे अभी हमारी एडवांस पार्टी काम कर रही है, तो आगे एडवांस पार्टी में जाकर के बाबा की सेवा ही हम करेंगे, माना इस पुराने दुनिया के बंधनों से पूरी तरह से आत्मा मुक्त हो जाएगी। तो और कभी भी अकाल परिस्थितियां भी हम पर प्रभाव नहीं डालेंगी। तो बाबा ने लास्ट के दिनों में अशरीरी स्थिति का बहुत अभ्यास किया। तो दादियां सुनाते थे ये भी बात कि बाबा से जब मिलते थे उस स्थिति में, जब बाबा होते थे तो हम तो सोच कर जाते थे कि हम सेवा कर आए हैं, हम अपनी बात बाबा को सुनाएंगे, हमने ये सेवा की, इतना उमंग, फिर कोई प्रश्न भी होता था तो बाबा से पूछेंगे। लेकिन बाबा के सामने जाते थे और बाबा की दृष्टि मिली, सब भूल गए कि ये इतना इतना सुनाना था बाबा को, और लगता था अभी क्या सुनाए, माना वो दृष्टि ही ऐसे भरपूर कर देती थी, तो सोचते थे ये क्या सुनाने की बात है बाबा को, ये सुनाएंगे, तो अपने आप ही जैसे शांत, जैसे बाबा की स्थिति होती थी ऐसे ही हम वो अशरीरी स्थिति में चले जाते थे और संतुष्ट भी हो जाते थे। और कोई बात की राय बाबा को देनी भी है तो बाबा 2 शब्दों में वो राय दे करके हमें संतुष्ट कर देते थे। तो उन्होंने अनुभव किया बाबा की उस अशरीरी स्थिति को, जो लास्ट में बाबा की वो पावरफुल स्थिति थी। और अमृत वेले हम इसका बहुत अच्छा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले हमें प्रकृति का भी सहयोग है। वैसे ही हम सारी रात सोए होते हैं तो सोना माना ही देह से न्यारा होना, सोते समय देह भान होता है क्या? तो वैसे ही आत्मा ने सारी रात वो अनुभव किया है तो उठ करके, सबसे बड़ी माया जो उस समय सुस्ती की है, अगर उस सुस्ती की माया से हम फ्री हो गए और पावरफुल अमृत वेला हम करते हैं, तो अशरीरी स्थिति का या परम धाम में बीज रूप बाबा के साथ मैं हूं ना, वो भी तो हमारी विदेही स्थिति है ना। परम धाम में जो बाबा के साथ हम बीज रूप स्थिति का, बाप समान स्थिति का अनुभव करते हैं, वो अनुभव करना बहुत सहज होता है। सीधा मन बाबा के पास टिक जाता है। तो ये अनुभव अगर हमने अमृत वेले कर लिया, फिर सारा दिन हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें सहज ही वो आत्मा की अपनी स्मृति आती रहेगी। फिर मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ। एक बार बाबा ने बोला था तो दादी ने एक एक घंटे का ये ट्रैफिक कंट्रोल शुरू कराया था, होता है ना मधुबन में, हर घंटे में एक मिनट गीत बजता है। तो वो क्यों बजता है? क्योंकि बाबा ने कहा था कि हर घंटे में एक मिनट भी, दो मिनट भी अशरीरी हो जाओ, तो अगर अशरीरी हो गए तो फिर से चार्ज हो जाएंगे, फिर उसके बाद कर्म आओ। क्योंकि हम एक एक मिनट तो ये याद नहीं कर सकते कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन वो कंटिन्यूटी हमारी बनी रहेगी अगर एक एक घंटे में भी हमने एक मिनट अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया, तो हम भूलेंगे नहीं, यानी देह अभिमान में हम उतना सहज नहीं आएंगे। फिर मैं कौन सी आत्मा हूं ये भी अभ्यास करना है, केवल ये नहीं मैं आत्मा हूं लेकिन कौन सी आत्मा हूं। तो बाबा ने इतने टाइटल दिए हैं हमें, कितने स्वमान दिए हैं, और वो स्वमान, जो स्वमान हमें लगता है, जैसे हर दिन आपको यहाँ स्वमान मिलता है ना भट्टी में, तो हम सारे दिन उस स्वमान की स्थिति में रहने का अभ्यास करते हैं। तो आत्मा के साथ साथ मैं कौन सी आत्मा हूँ ये अभ्यास भी हमारा रहे। तो ये है निराकारी स्थिति का पुरुषार्थ, कि हम निराकारी बने, निरंतर हम उस स्थिति को अपना बनाए रखें। फिर निर्विकारी हम बनेंगे, निराकारी से ही निर्विकारी बनेंगे। जैसे कहा ना, देह अभिमान विकारों की जड़ है और आत्माभिमान ही हमारी स्व उन्नति का आधार है। तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी उसके बाल बच्चे हैं, इन सब से हमें मुक्त होना है, उस पर पूर्ण विजयी बनना ही, संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण निर्विकारी ही संपूर्ण पवित्र है। केवल काम विकार पर विजय पाना संपूर्ण पवित्रता नहीं है, ठीक है, उसको पवित्रता कहते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता किसको कहता है बाबा? सभी विकारों पर, उसके अंश वंश पर भी, केवल विकारों के मोटे रूप नहीं लेकिन उसके अंश वंश पर भी विजयी होना ही संपूर्ण पावन बनना है। तो मोटे रूप पर तो हम विजयी हो जाते हैं, जैसे ही ज्ञान समझ में आता है, बाबा से योग लगाते हैं, वो शक्ति मिलती है, है ना। जैसे काम विकार को जीतना बाबा के बच्चों के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाबा हमें इतनी सहज विधि देते हैं, तो घर ग्रस्त में रहते हुए भी असंभव को संभव कर देते हैं। जिसे आज की दुनिया में असंभव समझते हैं, बाबा के बच्चों ने क्या किया उसको, संभव करके दिखाया, तो वो संभव किया। लेकिन काम विकार का जो सूक्ष्म रूप है वो दो तरह से आता है ना, एक तो है हद की कामनाएं। बाबा कहते हैं हद की कामनाएं रखना भी काम विकार का अंश है। तो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वो हमारी हो तब हम कहेंगे कि काम पर विजयी, माने हद की इच्छाएं ना, जो मैं संपूर्ण बन जाऊं, बाबा के समान बन जाऊं, ये भी एक इच्छा है, लेकिन ये हद की इच्छा नहीं है, ये है शुद्ध इच्छा बाबा के, हाँ, बाबा के लिए जो हमारा पुरुषार्थ की लगन है। लेकिन जो संसारिक इच्छाएं हैं, जो हद की इच्छाएं हैं, चाहे व्यक्तियों से हैं, व्यक्तियों से भी होती हैं और वस्तुओं की भी होती हैं, तो ये कामनाएं। फिर दूसरा काम विकार का अंश आता है जब हम दैहिक दृष्टि में आ जाते हैं, जब भी आ जाते हैं देह अभिमान में आ जाते हैं, तो फिर जो दूसरों की देह को देखने लगते हैं तो कई बातें हैं जो खींच सकती हैं बुद्धि को, है ना, कोई के गुण बहुत अच्छे लगते हैं या कोई का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है या कोई का शरीर सुंदर है, सुंदरता है उसके अंदर, तो वहां कहां भी उस आकर्षण में बुद्धि गई माना अच्छा लगता है। इसको बाबा कहता है, बाबा कहता है अच्छे लगते हैं तो सब अच्छे लगते हैं, कोई भी हो कैसा भी हो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन ये अच्छा लगता है। अब ये अच्छा लगता है माना, जो बाबा की भाषा मैं बोल रही हूँ, मेरी भाषा नहीं बोल रही, बाबा कहता है अगर ये अच्छा लगता है माना दाल में, तो आप समझ जाओ बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि किसी एक के ऊपर हम प्रभावित हो रहे हैं किसी भी बात को लेकर के, चाहे उसके गुणों को लेकर के, चाहे उसके व्यक्तित्व को लेकर, चाहे उसकी सेवाओं को लेकर, उसके सहयोग को लेकर, स्नेह को लेकर, कोई भी बात हो सकती है जिसके कारण कोई हमें अच्छा लगता है। अब अच्छा लगेगा तो फिर उससे हम बात भी करेंगे, जो अच्छा लगता है उसी से बात करते हैं, फिर बात करेंगे मिलेंगे तो क्या होने वाला है, झुकाव। और वो झुकाव क्या होगा, कब लगाव में बदल जाएगा हमें भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया में भी हम देखते हैं ना, जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं, जिसके साथ हम लंबा समय रहते हैं, मोह किससे होता है, उन्हीं लोगों से मोह होता है। अनजान लोगों से मोह होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता है ना, तो मोह किससे होगा या लगाव किससे होगा, फिर जिसके साथ हमने उठना बैठना बात करना समय बिताना, इसको बाबा फैमिलियरिटी भी कहते हैं, इनसे मेरी फैमिलियरिटी हो गई, तो वो क्या हो गया, काम विकार का अंश प्रकट हो रहा है। फिर हम सोचते हैं शिव बाबा तो निराकार हैं, ब्रह्मा बाबा हैं फरिश्ता आकार हैं, अब मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरा मन उलझन में है, तो मेरा कोई तो होना चाहिए जिससे मैं बात करूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कोई एक तो, बाबा की भाषा तो हम बोल रहे हैं नहीं होना चाहिए, पर क्या होता है किसी को बना लेते हैं अपना, कि ये तो मेरी दिल की बात समझते हैं, यही समझते हैं मुझे, और कोई समझ ही नहीं सकता। और बाबा ने कहा आपने किसी को भी अपना एक संबंध भी जोड़ लिया, हाँ भाई बहन का भी जोड़ लिया, चलो ये तो हम सखी सहेली या ये मेल फीमेल की बात नहीं कर रहे, मेल फीमेल तो छोड़ दो, अगर आपस में बहनों बहनों में भी होता है ना, ये मेरी सखी है, ये फेवरेट है मेरी, या यही मुझे समझती है, या जो भी, तो वो भी अगर हमने किसी से वो अपना नाता जोड़ लिया और कोई प्रॉब्लम है तो मेरा आधार कौन है, मेरा सहारा कौन है, यही है, तो फिर इसका मतलब बाबा भूल गया ना हमको, पहले कौन याद आ रहा है, आत्मा याद आ रही है। तो अगर आत्मा याद आती है तो उस आत्मा के साथ मेरा कर्म बंधन का हिसाब किताब बनता है, और कर्म बंधन बना, क्योंकि ये समय कर्म बंधन बनाने का तो नहीं है, कर्मों से मुक्त होने का है, तो फिर बाबा से उतना योग मेरा कम हो जाएगा। उसकी निशानी ही यही है कि आप बैठेंगे योग में बाबा को याद करने, और याद कौन आएगा, वो आत्मा, पहले वो आत्मा ही याद आएगी, वही आपकी बुद्धि को खींचेगी। तो बाबा से जो प्यार अनुभव होना चाहिए, बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलेगी, और फिर हमारी शिकायत होगी योग में बैठते तो हैं पर योग लगता ही नहीं। तो अब क्यों नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, तो ये अंश-वंश कहीं ना कहीं प्रकट हो जाता है। तो अपने सूक्ष्म लगावों को भी हम चेक करें, इसीलिए बाबा कहता है कि एक बाप दूसरा ना कोई, संपूर्ण पवित्रता क्या है, एक बाबा दूसरा ना कोई, सर्व संबंध हमारे बाबा से हैं, और बाबा से सर्व संबंध केवल दिमाग से समझने की बात नहीं है। एक होता है ज्ञान से मैं जानती हूं, दिमाग से हम मैंने मान लिया कि बाबा ही मेरा सब कुछ है, लेकिन दिल से मैंने अभी तक अनुभव नहीं किया तो फिर बुद्धि जाती है। अगर दिल से मैंने अनुभव नहीं किया तब हम ये कोशिश करते हैं कि कोई मेरा हो, और बाबा कहते हैं अगर आपको अनुभव है तो फिर भले ही बाबा निराकार है, भले ही बाबा आकार है, लेकिन आपको आवश्यकता के समय ऐसे ही अनुभव होगा जैसे कि साकार में हमने बाबा से बात की, जैसे कि साकार में हम बाबा से मिले। और बाबा एक मनुष्य आत्मा हमें क्या मदद करेगी, वो तो एक मनुष्य आत्मा तो क्या है, यथाशक्ति है ना, शिव बाबा तो सर्वशक्तिमान है ना, तो उसकी मदद करने का तरीका ही बिल्कुल निराला है। तो जो भाई बहने ऐसा अनुभव करते हैं, पर ये उन्हीं को होता है जिनको एक बल एक भरोसा है, तो जो ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी भी ऐसा होता है और हमें बाबा की ऐसी मदद अनुभव होती है, वो हाथ उठा सकते हैं। लो कितने सारे हैं, यहाँ तो बहुत है, तो फिर जरूरत है किसी दूसरे की, है या नहीं, तो बात ही खत्म हो गई ना फिर, तो फिर हमें कोई दूसरा चाहिए ही नहीं, जब सर्वशक्तिमान हमारा सर्व संबंध से साथी है तो फिर प्योरिटी हमारे लिए क्या बड़ी बात है ना। तो इसीलिए काम विकार के इस अंश वंश पर, और बाबा कहता है कि हमेशा सोचो ना, मानो किसी में बुद्धि जाती है आपकी, तो हमेशा सोचो उसको बनाने वाला कौन, बाबा ने ही गुण दिए है ना, बाबा ने ही उसमें वो विशेषताएं भरी हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई किसी पर प्रभावित नहीं होता, कोई विशेष बात होती है उसके अंदर तभी वो खींचती है, तो फिर वो गुण उसमें उस आत्मा बाबा ने भरे हैं, तो फिर अगर उसमें भर सकता है तो हमारे को भी वो गुण आ सकते हैं। तो हम गुणों की खुशबू लें, यानी उनके गुणों से प्रेरणा लें, लेकिन प्रभावित नहीं हो। अच्छे को भी हम साक्षी होकर देखें और बुरे को भी हम साक्षी होकर के देखें, यही ज्ञान है ना, ज्ञान जो बाबा के ज्ञान की शक्ति है वो हमें ऐसे ही जीवन मुक्त बनाती है, तो तभी तो हम बंधनों से मुक्त बनते हैं। फिर दूसरा जो क्रोध विकार है, काम पर तो फिर भी जीत पा लेते हैं, लेकिन क्रोध पर तो ब्राह्मण जो है मैच्योरिटी ब्राह्मण फेल हो जाते हैं ना, भले दुनिया वालों जैसे हम चीखते चिल्लाते नहीं है, गुस्से में गालियां नहीं देते, लेकिन फिर भी गुस्सा तो पूरी तरह छूटा नहीं है। जो समझते हैं 100% हम गुस्से से मुक्त हो गए, ना स्थूल में आता है और ना सूक्ष्म में आता है, वो हाथ उठा सकते हैं। आप परीक्षा आजकल, आज आपका चार्ट हो रहा है, कोई नहीं उठा रहा, इसमें सारे फेल हैं, बाकी सब बातों में तो फिर भी 8-8, 10-10 थे। हाँ, तो क्यों नहीं पास होते इसमें? हाँ, तो बाबा कहता है चलो मोटे रूप से हम नहीं करते गुस्सा, दुनिया वालों जैसा गुस्सा नहीं करते ब्राह्मण, वो बात बराबर है, वो तो आपका परिवार भी आपको सर्टिफिकेट देता होगा कि पहले से इनका गुस्सा कम हो गया, खत्म हो गया है, नहीं बोलते होंगे कम हो गया है, लेकिन खत्म क्यों नहीं हुआ, हम बोलते नहीं हैं लेकिन मन से बोलना शुरू कर देते हैं, मुख से बोलना बंद कर देते हैं, मन से शुरू हो जाते हैं। मन से माना किसी ने मेरी बात नहीं मानी, किसी ने गलती कर दी, किसी ने झूठ बोल दिया, किसी ने मेरे को धोखा दे दिया, जो भी, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं उसके लिए, फटाफट नाराजगी आ जाती है और वो हमारे हाव भाव में दिखाई देती है ना, फिर हम किनारा करते हैं थोड़ा, जो भी है, मतलब ये सारी चीजें हमारे सूक्ष्म में आती हैं, प्रकट होती हैं, और वो सामने वाले को भी पता चलता है कि अब इनका वो स्नेह नहीं है हमारे से जो पहले था, तो उनको समझ में आ जाता है कि गुस्सा तो कम हुआ है लेकिन पूरा नहीं गया है, तो इतना भी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो कैसे विजयी बनेंगे, कैसे विजयी बनेंगे। तो बाबा हमें कहता है कि आप अपना कर्तव्य मत भूलो, हमारा कर्तव्य है कोई आत्मा कितनी भी परवश है, अब वो माया के परवश है, अब चाहे वो ज्ञानी है अज्ञानी है, अज्ञानियों को तो इतना फर्क नहीं पड़ता, हमको ज्ञानियों से थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ता है, तो उस समय तो वो माया के परवश ही है ना। अगर वो कोई ऐसा व्यवहार हमसे कर रहा है जो गुस्सा दिलाने वाला है, तो फिर हमको क्या करना है, उनके प्रति हम रहम दिल रहें, उनके प्रति हम सहयोगी बने, ताकि वो अपनी कमजोरी को ठीक कर पाए ना। तभी हम टिट फॉर टैट करेंगे, यानी तुमने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही करूं, तो फिर हम उनको कुछ भी परिवर्तन नहीं कर पाए। हम सहन शक्ति किसको कहते हैं, सहन करना क्या है, बाबा कहता है कोई आपकी इंसल्ट कर दे, कोई आपको गाली दे, हाँ, या कोई आप पर गुस्सा करे, तो भी हम क्या हैं, तो भी हम शांत हैं, तो भी हम उनसे अच्छा ही व्यवहार कर रहे हैं, तो भी हम उनसे मीठा या सुख देने वाला व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा, है ना। दूसरों को अगर हमें सिखाना है तो फिर थोड़ा आसान लगता है हमको, लेकिन यही बात जब खुद पर आती है तो सबसे ज्यादा मुश्किल। तो यही हम करेंगे तो फिर हमारे नेगेटिव वाइब्रेशंस कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारी उनके प्रति शुभ भावना है, तो वही परिवर्तन ला सकती है। चार बार आपने सहन कर लिया, दस बार, है ना, कोई अगर ऐसा होता है ना तो वो हमसे बार बार वैसा ही व्यवहार करता है कि भाई हम गुस्से में आ ही जाएं, उसका बोलने का ढंग या जो भी उसका हमारे साथ चलने का ढंग ऐसा ही होता है, तो फिर कई बार हम सोचते हैं कब तक, आखिर कब तक सहन करेंगे हम, 10 बार हो गया, 20 बार हो गया, कोई लिमिट होती है ना किसी चीज की। फिर जब हम आते हैं अपने ऊपर तो फिर वो पूरा पिछला हिसाब किताब एक साथ पूरा कर लेते हैं, जो 20 बार तक सप्रेस हुआ था, वो कहते हैं ना कुकर की सीटी जब फटती है तो फिर पूरा ही बाहर आ जाता है, जो उसके अंदर जितना भी मैटर मटेरियल होता है वो सब बाहर आता है, तो फिर ऐसा करना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं कितनी भी बार सहन किया हो, 20 बार भी सहन किया हो, फिर भी क्या करना है। तो हमारे 20 बार को देख के सामने वाली आत्मा अपने आप उसमें वो परिवर्तन की शक्ति आ जाएगी, अगर हम 20 बार में ये सोच करके पूरी तरह से गुस्से में फिर नहीं आ गए, है ना। तो ये हमारा जो है, हम कहेंगे कि हमारे क्रोध पर विजय, जब हम इतनी अच्छी स्थिति अपनी, चाहे फिर वो कोई कैसा भी हो। तो ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है, और रोज हमें अपना चार्ट रखना पड़ेगा अगर हम गुस्से पर जीत पाना चाहते हैं। इसमें ही सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, यही परीक्षाएं आती रहती है सारा दिन, सबसे ज्यादा परीक्षाएं क्रोध वाली ही होती हैं। हाँ, तो इसी का ही चार्ट रोज हमें मेंटेन करना है, तो फिर धीरे 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 हमारा ये जो कड़ा संस्कार है ये खत्म होगा। फिर लोभ पर आते हैं, तो ऐसे दुनिया वालों जैसे हमें लोभ नहीं रहता ना, लोग धन के पीछे ही भागते हैं, सारा अपना टाइम समय किसको लगा रहे हैं, शक्ति किसको कमाने में लगा रहे हैं, धन को कमाने में, और हमें समझ में आ गया कि हमें अविनाशी कमाई करनी है, यही हमारे साथ जाने वाली है, तो फिर हम समय अपना पुरुषार्थ में भी देने लगते हैं, पूरी तरह से धन के पीछे है ऐसा नहीं, वो हमारा इंटेंशन या वृत्ति जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी लोभ का अंशवंश कैसे प्रकट होता है, कैसे प्रकट होता है, खान पान रहन सहन साधन सुविधाएं सबको चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं आवश्यकता तक तो ठीक है, आवश्यकता पूरी करने के लिए तो बाबा भी बंधा हुआ है, हाँ, जितना हमें जैसा खाना चाहिए, जैसा हमें रहना चाहिए, जो हमें साधन चाहिए, सेवा के लिए भी चाहिए, तो अपने अपने रहने के लिए भी चाहिए। लेकिन लोभ क्या है, जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं, अब इसके पास इतना बड़ा घर है तो मेरे पास भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अब मेरी आवश्यकता जितनी है वो तो उतना तो है मेरे पास, लेकिन अब मेरे को लोभ कहां प्रकट हुआ, जब मैंने दूसरे को देखा, या खान पान, हरेक के खान पान का अपना होता है। ब्राह्मण जो है यहाँ थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं ना, बाकी तो सब छोड़ देते हैं, लेकिन लोभ कहाँ जाता है, कैसा ऐसा खाना या मेरे खाने में इस तरह का टेस्ट होना ही चाहिए। हाँ, अब जिसको चावल खाने की आदत है, उसको चावल ना मिले, रोटी दे दो आप, उसका पेट ही नहीं भरेगा। और जिसको रोटी खाने की आदत है, उसको चावल दे दो आप, है ना, ऐसे ऐसे होते हैं कि मेरे को ऐसा ही खाना चाहिए। अब साउथ वालों को आप रोटी खिला दो, उसको इडली डोसा मत खिलाओ। तो ये सब क्या है, कहाँ ना कहाँ बाबा कहता है कि खाने में भी हमारी बुद्धि रहती है, ऐसा चाहिए। चाहिए माना जहां चाहिए आया, इसका मतलब लोभ का अंश है। पर बाबा ने कहा कि 36 प्रकार का भोजन बाबा खिलाता है, ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, तब कितनी वैरायटी होती है ना। और चाहे सूखी रोटी या गुड़ खाना पड़े, दोनों में राजी, माना हर हाल में राजी। राजी माना संतुष्ट। लोभ के ऑपोजिट क्या है, संतुष्टता। तो हर स्थिति में संतुष्ट रहना आना चाहिए। फिर चाहे मेरे कपड़े अच्छे हैं बहुत, और चाहे चत्तियों वाले कपड़े हैं, है ना, चाहे खाने का जैसे कहा, या जो भी हमारे पास साधन है ना, जैसे कई लोगों को जमा करने की आदत होती है, संग्रह करना भी लोभ है। तो वो उनके पास जूते होंगे तो 10-10 जूते होंगे ना, या कपड़ों के जो सेट होंगे वो भी कितने होंगे। तो ये सब क्या है, यह हम इकट्ठा करते जाते हैं। वैसे हम हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति वाले। तो यहाँ बाबा कहता है देर इज इनफ फॉर नीड्स नॉट फॉर ग्रीड, है ना। आवश्यकताएं पूरी करना मुश्किल नहीं है, पर अगर हम लोभ में जाएंगे तो फिर कितना भी आप इकट्ठा कर लो, उसका कोई अंत, जैसे इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तो ये हमें देखना है कि हमारी बुद्धि अनावश्यक किन्हीं साधन सुविधाओं में या रहन सहन की चीजों में तो नहीं जाती, क्योंकि वो हमारा बुद्धि योग बाबा से तोड़ देते हैं। जैसे व्यक्ति हमारा बुद्धि योग तोड़ते हैं, ऐसे चीजें भी हमारा बुद्धि योग तोड़ती हैं, क्योंकि हमारा समय किसमें लगा रहता है। हाँ, मैंने देखा, मेरे पास कार तो है, लेकिन वही कंपैरिजन करने गए तो अब जो मेरे ये दोस्त हैं, इनके पास तो नए मॉडल की गाड़ी आ गई या नए मॉडल का मोबाइल आ गया। अब मुझे भी कैसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए। तो अब मेरी बुद्धि उसमें लगी रहेगी, नहीं कैसे लाऊं, कैसे करूं, क्या करूं जो मेरे पास ये हो जाए, नहीं उससे भी अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं इससे भी। तो बुद्धि कहाँ गई, तो योग में भी बैठेंगे तो वही प्लानिंग करते रहेंगे कैसे होगा। तो इसका मतलब योग तोड़ा ना उसने। तो साधन है, मन यूज करने के लिए बाबा मना नहीं करता है, लेकिन वो मेरी साधना की स्थिति से मुझे नीचे लेकर के ना आए, तो वो मेरा हम कहेंगे कि लोभ के अंश वंश पर भी विजय। साधन यूज करने के लिए दिए हैं हमें बाबा ने, लेकिन वो हमारी स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में मदद करें, उसके लिए हम उसे यूज करें। आज मोबाइल भी है, हम उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। आज मोबाइल हमें कितना तीव्र पुरुषार्थी बना देता है, बना सकता है। ऐसे सब सुविधाएं हमें उससे मिली है, साइंस ने इतनी इन्वेंशन करके हमें दिया है, लेकिन चाहे तो हम फिर गलत दिशा में जाकर के उसका दुरुपयोग करके अपना समय को बर्बाद कर सकते हैं, है ना। जो हमारा योग लगना चाहिए वो और ही हमारा योग टूट जाता है। तो ये हमें देखना है कि हमारी इन सब चीजों में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कितनी है। फिर अहंकार के लिए बाबा हमें कहते हैं, डबल निरहंकारी शब्द है, एक तो निर्विकारी में भी है और फिर बाबा ने अलग से अंडरलाइन किया उसको, निरहंकारी बनो। तो दुनिया वालों जैसा अहंकार नहीं होता बाबा के बच्चों को, क्योंकि ये सब तो हम समझ जाते हैं कि ना मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, माना संपत्तिवान हूँ, या जो भी धनवान हूँ, पुत्रवान हूँ, ये सब जो है वो तो उस मैपन से हम मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ज्ञान योग में आने के बाद, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जो विशेषताएं हमारे अंदर हैं, उनका अभिमान हो सकता है कि मैं इन कलाओं से संपन्न हूं, मेरे में ये सेवा की योग्यता है, मुझे ये पोजीशन मिली है, या जो भी मैं बहुत प्लानिंग बुद्धि हूँ, बुद्धिमान हूँ, जैसे होते ही है ना, अलग अलग सबकी क्षमता है। तो जो भी हमारी क्वालिटी है उसका अभिमान, मैंपन आ जाना, बिना प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देगा लेकिन थोड़ा मैंपन होगा जरूर। और उसकी उसकी निशानी क्या बताते हैं बाबा, अभिमान है तो क्या निशानी है, अपमान की फीलिंग तुरंत आएगी, किसी की छोटी बात भी सुन नहीं सकते, तुरंत फीलिंग में आ जाएंगे या फिर गुस्से में आ जाएंगे, क्योंकि अभिमान गुस्से को जन्म देता है। तो हम चेक कर सकते हैं अपने आप को इस बात को लेकर कि कोई जरा भी हमें पॉइंट आउट करता है, जो भी सूक्ष्म अभिमान होगा ना वो अपनी गलती कभी मानेगा नहीं, क्योंकि वो अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तो सिद्ध करना शुरू कर देंगे। और सिद्ध करेंगे तुम मतलब कहीं मेरा मान, अगर मेरी कमी सामने आ जाती है या हम मान लेते हैं तो फिर कहीं मेरा मान इनकी नजरों में कम ना हो जाए, हो सकता है ना, है ना। आज तक तो ऐसी कोई मेरे से गलती हुई नहीं, अब मेरे से ये गलती हो गई, मानो कोई भी बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो गया कुछ ऐसा काम, तो फिर हम अपने मान को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं या और भी तरह से जैसे कहा सिद्ध करना शुरू कर देते हैं, तो सामने वाले को क्या पता मान भी लेगा, है ना, जो हमने अपनी बातें कही उनके सामने। तो बाबा कहता है ठीक है, आप मनुष्य आत्माओं के सामने अपना मान बचा सकते हो, अपना नाम बचा सकते हो, लेकिन शिव बाबा से छुपा सकते हो, नहीं छुपा सकते। तो बाबा को तो पता है ना, तो फिर बाबा के दिल तख्त से नीचे आ जाएंगे, जो हमारी अविनाशी प्राप्ति हमें होनी चाहिए उससे हम वंचित रह जाएंगे। तो ये भी अल्पकाल का है, क्योंकि जो सच होता है उसको सामने आने की शक्ति है, थोड़ा समय के बाद, थोड़ा समय निकल जाएगा फिर सच खुल जाएगा, तो फिर क्या होने वाला है। तो ये भी अल्पकाल के लिए नाम मान शान बचाया हमने। फिर जिनको सूक्ष्म अभिमान होता है वो अपने को हमेशा ही राइट समझते हैं, मैं ही राइट हूं, मैंने जो कहा वो सही है, तो सामने वाला हो सकता है कि वो जो बात कह रहा है वो हमारी बात से अलग है, लेकिन वो अपनी रीति से राइट हो सकता है, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि कभी भी किसी के विचारों को हमें काटना नहीं है, आप गलत हो नहीं, लेकिन ठीक है आपका भी विचार अच्छा है, और हमारा जो विचार है अगर हमें लगता है सही है तो उनकी बात हम सुन लें, उनका रिस्पेक्ट रखें, लेकिन जो हमें करना है फिर कई बार दूसरा तरीका भी हो सकता है उसका। तो इस तरह से हमें ये समझना चाहिए कि दूसरे के नजरिए को भी हम समझें। फिर कई बार जिनको सूक्ष्म अभिमान होता है वो दूसरों की प्रशंसा नहीं सुन पाते, उसका एक ही कारण है कि अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, तो मेरी ही प्रशंसा होनी चाहिए, अब दूसरे की प्रशंसा हो गई तो ईर्ष्या में आ जाते हैं, अब ईर्ष्या में आ गए तो क्या करेंगे, उसकी कमी बताएंगे, जानबूझकर बताएंगे, आपको पता नहीं वो कैसे हैं, मुझे पता है, आप नहीं जानते उनको। अगर हमारी ऐसी टेंडेंसी है, हम चेक कर सकते हैं अपने आप को, क्योंकि सभी एक जैसे तो नहीं है, लेकिन कोई कोई में ऐसा होता है कि तुरंत उनकी बुराई करना शुरू कर देंगे, और अगर हमने किया माना, इसका मतलब उनके प्रति हमारे मन में वो द्वेष भाव बाहर आ जाता है। तो ये भी हमारा अभिमान का अंश है, जिसमें गुण है वो होते ही है ना, गुण तारीफ तो किसी के गुणों की ही होती है, और हमेशा एक दो के साथ जो हमारे संबंध है वो एक जैसे भी नहीं होते हैं, है ना। मेरा आपके साथ अच्छा संबंध है, पर हो सकता है दूसरे का संबंध आपके साथ उतना अच्छा ना हो, तो वो आपको उस नजर से देख रहे हैं मानो, तो वो आपकी वो पक्ष की बात करेंगे। तो इसीलिए अगर हमें किसी की तारीफ की जा रही है तो हम भी जरूर उसकी विशेषता को स्वीकार करें कि हाँ ये उसमें गुण है, और कई बार इवन बाबा कहता है कोई किसी की आपको ग्लानी की बात कर रहा है, कोई कमजोरी सुना रहा है, तो भी आप बताओ, बल्कि और ही उसको ये बताओ कि नहीं, इसके अंदर ये गुण भी है। हमारी दृष्टि तो सदा ही क्या होनी चाहिए, गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। थोड़ा सूक्ष्म अभिमान का अंश है तो रौब रखते हैं, वो ज्यादा भाइयों में दिखाई देता है। नहीं, रौब नहीं रखेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो रौब रखना है या रुहाब रखना है, क्या रखना है? रुहाब। बाबा कहता है रूहानी नशे में रहो। रुहाब मतलब जो बाबा ने हमें शुद्ध अभिमान दिया है, सोमान माना शुद्ध अभिमान, ये देह अभिमान वाला अभिमान नहीं, लेकिन जो शुद्ध नशा बाबा ने हमें दिया है, उस नशे में, उस रूहानी नशे में, उस रुहाब में, उस नारायणी नशे में हम रहें, तो बाकी सब जो है वो अपने आप ही हमें मानेंगे ना, हमें अपने आप ही सबसे सम्मान मिलेगा, हमें वो रौब जमाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, कि वो हमारा प्रभाव कैसे पड़ेगा ना, ये भी हमारी गलत सोच है। तो इस तरह से जब हम सभी विकारों के, बाबा कहते हैं माया के सूक्ष्म रूपों को परखने में कई बार हम फेल हो जाते हैं और हम समझते हैं ये तो चलता ही है ना, ऐसे ही तो सब करते हैं ना, कौन बना है, अभी संपूर्ण बनने में टाइम है, थोड़ा टाइम पड़ा है, बन ही जाएंगे, धीरे धीरे हो ही जाएगा, ऐसे ऐसे फिर अलबेलेपन के संकल्प हम करते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा अंत तक अगर हम ऐसे संकल्प करेंगे तो अंत में हो जाएंगे तो हो जाएंगे या बहुत काल का पुरुषार्थ या अभ्यास। बाबा कहता है अभी से हमारा अटेंशन होगा तभी हम संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। निराकारी और निर्विकारी का पुरुषार्थ हमारा बहुत काल का चाहिए, तो फिर अंत में हमारी ये स्थिति हमें बाप समान बना ही देगी। ओम शांति।
जोरदार तालियों से हम देवी को थैंक्स करेंगे, क्योंकि क्लास से भी ज्यादा मुझे लगा कि चार्ट चेकिंग चल रहा है ना दीदी, जैसे जैसे बोलते जा रहे थे तो सारी बातें सामने आती जाती थी और होता था कि हाँ सही बात है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से हम ऑनेस्टली अपना चार्ट चेक भी कर सके, तो उसके लिए दीदी को फिर से थैंक्स है दीदी। और अभी 2 मिनट हम योग में बैठेंगे, उसके बाद फिर शाम के इंस्ट्रक्शंस है तो वो सुनकर चलेंगे।
संचय ना कोई वस्तु वैभव ना कोई फूल साधन साधना आराधना में सदा हो मन मगन खींचे ना कोई वस्तु वैभव ना कोई फूल साधन में तेरे डूबे रहे याद में तेरे डूबे रहे सबकी ये चाहना है ओ बाबा तुम सा बनना है एक यही तमन्ना